This is an ABP Life podcast.
इंडियन रिजर्व बैंक ने लगातार नवी बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर ज्यों का त्यों रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। उसके बाद से ज्यों का त्यों रेपो रेट बरकरार रखा है। आखिर ये रेपो रेट होता क्या है, आम इंसान इसे कैसे समझे, क्या रेपो रेट से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, आखिर कैसे, आरबीआई गवर्नर ने आज अपनी बातों में क्या चीजें ऐसी कही जो एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी है और उनके काम की है, आइए इस बारे में बातचीत करेंगे एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं
जी, मैं अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग।
जी थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नवी बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इस पर हम बात करें उससे पहले हम चाहेंगे, चूंकि ये एक एक्सप्लेनर है जिसमें हम छोटी से छोटी चीज को डिटेल में लोगों को समझाते हैं आम भाषा में, मैं चाहूंगी अगर आप आसान भाषा में हमें समझा सकें कि ये रेपो रेट आखिर होता क्या है।
क्या है कि बैंक जो है पैसा जब रिजर्व बैंक से लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बैंक जो आरबीआई चार्ज करता है वो रेपो रेट उसको कहा जाता है,
जो आरबीआई चार्ज करता है।
जी तो वो उसको रेपो रेट आसान भाषा में जो है इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि बैंकों को समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। जब उनको उनका क्रेडिट और डिपॉजिट रेशो में कुछ बदलाव आता है या उनको क्रेडिट के लिए फर्दर फंड्स की जरूरत होती है, तो रिजर्व बैंक उनको फाइनेंस करता है और उसके ऊपर जो रेट रहता है वो रेपो रेट रहता है।
जी इस बार जो ये कहा जा रहा है कि रेपो रेट जो है वो बरकरार रखा गया है 6.5%, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको बरकरार रखने की वजह क्या है, क्योंकि कल से ही लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जितने भी इस फील्ड के जानकार हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस बार भी बरकरार रखा जा सकता है, इसकी कोई खास वजह
क्या है? कि रिजर्व बैंक की सोच है कि जितना कम से कम फंड्स जो है मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी होगी तो उससे महंगाई को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। अगर पैसा फंडिंग मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होगा तो महंगाई बढ़ती है, ऐसा रिजर्व बैंक की सोच है। तो इसलिए रिजर्व बैंक एक तो वो एस्पेक्ट है कि भाई लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए और फंड को, ताकि महंगाई ना बढ़े। दूसरा, महंगाई को रोकने के लिए बाकी भी रिजर्व बैंक प्रयास करता है, लेकिन उसमें से एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण की इन्फ्लेशन को रोकने में सरकार जो है प्रयास करती है और वो ये कंट्रोल करती है रेपो रेट से।
जी एग्जैक्टली। क्या आप ये भी हमें बता सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए क्या अनुमान है इस बार महंगाई अनुमान?
जो अभी करंट जो इन्फ्लेशन रेट है 5.1% है, और वो भी ज्यादा इसलिए है कि भाई जो फूड इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है, यानी जो खाने पीने का सामान है वो महंगा है। तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी मानसून अच्छा रहा है, उसके बाद अगर अच्छी अवेलेबिलिटी रहेगी फसलों की और बाकी सभी चीजों की, तो वो खाने पीने की चीजों में भी कमी आएगी और इन्फ्लेशन कम होगा। तो सरकार अगले साल भी जो है फूड जो इन्फ्लेशन है वो मैक्सिमम 4.5 एक्सपेक्ट करती है, और उसका टारगेट है कि वो 4 और 5 के बीच में रहना चाहिए।
जिस तरह से बरकरार रखा गया है रेपो रेट को, अगर हम पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना करें, क्या महंगाई रेपो रेट के कारण कंट्रोल्ड हुई है?
वो एक मैंने कहा ना कि वो एक वन ऑफ द रीजन है, एक फैक्टर है, उसके कारण काफी कुछ जो है रिजर्व बैंक कंट्रोल करने में सफल रहा है महंगाई को। लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण की महंगाई बढ़ती है और उसके कारण से महंगाई बढ़ी है।
जी एग्जैक्टली। अब इसके अलावा मैं चाहूंगी अगर आप इस पर भी हमें बताएं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने काफी बातें आज कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि चेकअप कुछ घंटों में क्लियर होंगे। अगर आप इस चीज को भी आम आदमी के लिए बताएं कि क्या प्रोसीजर होता है और अब कैसे ये आसान किया जा रहा है।
जी, क्या है कि जो हम चेक क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा करते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो दो दिन के बाद जो है वो क्लियर होता है और हमारे अकाउंट में उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अभी जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसके अनुसार अगर आप जो भी चेक देते हैं तो उसका इमेज जो है कैप्चर किया जाता है ब्रांच में और ब्रांच से बैंक के अपने क्लियरिंग हब के अंदर जाता है और वहां से जो अलग अलग पांच एरिया में जो ग्रिड बनाए हुए हैं वहां पर एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो जो है प्रेजेंट की जाते हैं सभी बैंकों द्वारा और वो सेटलमेंट हो जाती है ट्रांसफर की। तो अभी रिजर्व बैंक का सोचना है और कहना है कि इसको हम दो दिन की जगह पर कुछ घंटों में ही सेटलमेंट को जो जितने जैसे जैसे चेक आते जाएंगे उसको अलग अलग लॉट के अंदर उसको जो है सेटलमेंट के लिए करके और लोगों को क्रेडिट कुछ ही घंटों में दे देंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक का कि भाई जो पैसा है इमीडिएटली जब हम चेक जमा कराएंगे और हमें वो सेम डे और कुछ घंटों में मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत है और पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो लोन बैंकों से लेके रखते हैं यानी जिनकी लिमिट्स रहती हैं क्रेडिट की और वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर काउंट करता है इंटरेस्ट का कि अगर एक दिन पहले उनको क्रेडिट आ जाता तो एक दिन का बहुत अच्छा उनको रिबेट जो है उस इंटरेस्ट में मिल जाता है।
बिल्कुल। आखिर में आपसे मैं ये जरूर से पूछना चाहूंगी आरबीआई गवर्नर की जो बड़ी बातें रही हैं उसमें क्या कुछ आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या वो खरा उतरा या नहीं?
नहीं, एक्सपेक्टेशन तो यही था। कारण क्या है कि भाई एक जो इन्फ्लेशन है दूसरा जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो वोलेटाइल पोजीशन है इन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा था कि भाई अभी कोई भी रेपो रेट से तो आरबीआई छेड़छाड़ नहीं करेगी लेकिन आरबीआई कुछ और रिलैक्सेशन या कुछ और जो ग्राहकों को दे सकती है और वो दिया है। एक तो ये सीटीएस क्लियरिंग चेक के रूप में, दूसरा जो यूपीआई की से टैक्स पेमेंट की जो लिमिट थी अभी 1,00,000 रुपए थी, अभी क्योंकि बहुत जो लोग टैक्स पे करते हैं वो एक उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने उसको 5,00,000 कर दिया है और कोई भी टैक्स आप मतलब 5,00,000 रुपए तक यूपीआई से कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है आरबीआई का। वैसे ही उन्होंने जो एक बैंक से दूसरे बैंक यूपीआई से कोई भी कस्टमर करता है उसकी लिमिट को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि वो भी बढ़ाई जाएगी। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो फर्जी लोन ऐप से लोगों को जो ऐसे अपने जाल में फंसाया जाता है उसको करने के लिए उन्होंने बैंकों से कहा है कि आप अपने जो ये अप्रूव्ड ऐप हैं उनको आप जो है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता रहे कि ये जो ऐप है ये जेन्युइन ऐप है बैंक का और उससे ही अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो लोन लें, लेकिन बाकी ऐसे किसी भी फर्जी ऐप के चक्कर में वो नहीं फंसे। तो इस तरह से बहुत एक अच्छा ग्राहकों को जिसे कहें इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत रिलीफ देने का काम किया और बैंकों के लिए भी उन्होंने एक जो रिस्ट्रिक्शंस और उनको एक कंट्रोल में रहने के लिए कहा है कि आप जो रिटेल में अंदरून फाइनेंस करते जा रहे हैं उसको सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि आपकी डिपॉजिट और क्रेडिट की जो रेशो है वो उससे खराब होती है। और दूसरा जो गोल्ड लोन के रूप में या हाउसिंग लोन के टॉप अप के लोन के रूप में भी जो बैंक पैसा किसी भी रूप में दे देते हैं और वो हाउसिंग में उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता और वो क्रेडिट जो है इधर उधर यूज हो जाता है और क्रेडिट खराब होता है तो उसके लिए भी बैंकों को भी सचेत किया है और बैंकों को डिपॉजिट ग्रोथ के लिए कहा है कि आप जो है उसके लिए इनिशिएटिव लो। हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक अपने डिपॉजिट पर कुछ और इंसेंटिव वाइज इंटरेस्ट करे ताकि बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ हो सके।
एग्जैक्टली।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।